राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन गज जन रंजन, यशोदानंदन गज जन रंजन, यमुना तीरा बन चली, यमुना तीरा बन चली। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन गज जन रंजन, यशोदानंदन गज जन रंजन, यमुना तीरा बन चली, तीरा बन चली। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। विष्णु कुमार परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर सहस्त्री श्रीमदिष्टवाइंग्रीस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला फाउंडर आचार्य शिव दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तिवृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोपन गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेम आनंदे ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम दसम स्कंध अध्याय 61 बलराम जी के द्वारा रुक्मी का वध। रुक्मी कौन है? रुक्मिणी का बड़ा भाई, भगवान कृष्ण का साला। इसके पिछले अध्याय में हमने सुना था कि भगवान ने रुक्मिणी के साथ कैसे परिहास किया। रुक्मिणी जी बहुत भयभीत हो गई और बाद में फिर रुक्मिणी जी ने भगवान के परिहास का उत्तर दिया। रुक्मिणी जी का भय दूर हुआ और अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार से रुक्मिणी के साथ भगवान ने व्यवहार किया, उसी प्रकार अपनी अन्य पत्नियों के साथ भी व्यवहार करते थे उनके गर्व को दूर करने के लिए। तो अब आगे सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण की प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए जो अपने पिता से कम नहीं थे, जो अर्जुन के पास अपने पिता का सारा ऐश्वर्य था। कृष्ण ने प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। तो आप जानते हैं कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं? 16108 पत्नियां हैं और प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए, तो कितने पुत्र हुए कृष्ण के? 161,080 पुत्र हैं भगवान के। एक सतम कृष्ण से पुत्रां दस दशा बलां अजीजन नवमान पितो सर्वात्म संपदां। तात्पर्य लिखा है भगवान कृष्ण की 16108 पत्नियां थी और इस श्लोक के अनुसार कृष्ण के 161,080 पुत्र हुए। चूंकि इनमें से हर राजकुमारी ये देखती थी कि भगवान अच्युत कभी उसके महल से बाहर नहीं जाते, अतः हर एक अपने को भगवान की प्रिया समझती थी। ये स्त्रियां उनके विषय में पूरी सच्चाई नहीं समझ पाई। गृहान अनयपकम वीक्ष राजपुत्र अच्युतम स्थितम प्रेष्ठम नमंसत स्वम स्वम न तत्तत्व विदा स्त्रियः। तात्पर्य लिखा है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों की अनुमति से ही महलों से बाहर जाते थे, इसलिए हर पत्नी अपने को उनकी परम प्रिया मानती थी। भगवान जो है कैसे बंधे हैं, गृहस्थ जीवन में कैसे बंधे हैं, अपनी पति पत्नी से अनुमति लेकर के ही जाते हैं बाहर। सभा में जाना है ना, तो पत्नी से अनुमति लेते हैं। गृह स्वामिनी तो पूरा अधिकार भगवान के ऊपर, तो कितना सौभाग्य था। इसलिए ये स्वाभाविक है कि प्रत्येक पत्नी अपने को भगवान की प्रिया मानती है और अपना पूरा अधिकार समझती है भगवान के ऊपर। आगे भगवान की पत्नियां उनके कमल जैसे सुंदर मुख को देखती हैं, भगवान के मुख से मोहित हैं, उनकी लंबी भुजाएं और बड़े बड़ी आंखें हंसी से पूर्ण उनकी प्रेम भरी चितवनों से मोहित रहती हैं और उनके साथ मनोहर बातों से पूरी तरह मोहित हैं। सोचिए दिन रात भगवान से बातें करती हैं, कैसा जीवन, कितना अद्भुत जीवन है भगवान के साथ दिन रात बातें करना भगवान की पत्नियां। किंतु ये स्त्रियां अपने समस्त आकर्षण के होते हुए भी सर्वशक्तिमान भगवान के मन को नहीं जीत पाई। चार बम जको सबदना यत बाहु नेत्र सप्रेम हाथ रस वीक्षित वल्गु जल पे सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुं स्वैर्विभ्रम समशकं वनितां विभुं नहां। तात्पर्य में लिखा है, पिछले श्लोक में कहा गया है कि भगवान कृष्ण की रानियां भगवान के सत्य को नहीं समझ सकी। इसी सत्य की विवेचना इस श्लोक में की गई है। भगवान सर्वशक्तिमान अनंत ऐश्वर्य से युक्त अपने में पूर्ण है। वे भगवान में हमेशा दिन रात खोई हुई हैं। वे सब भगवान के बस में हैं, भगवान से आकर्षित हैं, लेकिन भगवान भगवान के और भी कार्य हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान इतने में सीमित हो गए। हाँ, भगवान सीमित भी हैं। भगवान भक्त से बंध जाते हैं, भक्त के बस में हो जाते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसके अलावा भगवान स्वतंत्र भी रहते हैं। ये तो अचिंत भगवान के गुण है ना। तो ये भी सही है कि भगवान अपनी पत्नियों के बस में है, लेकिन इसके साथ साथ भगवान स्वराट भी हैं। भगवान की स्वतंत्रता में कोई कमी नहीं आती है। ये भगवान का अचिंत गुण है। इन 16,000 रानियों की टेढ़ी भौहें उनके गुप्त मनोभावों को व्यक्त करती हैं। कैसे? लजीली हंसी युक्त तिरछी चितवनों से व्यक्त करती हैं, अपने मनोभावों को व्यक्त करती थीं। इस तरह उनकी भौहें माधुरी संदेश भेजती हैं भगवान के लिए। तो भी कामदेव के इन बाणों से वे भगवान कृष्ण की इंद्रियों को चंचल नहीं बना सकीं। और भी कई साधन हैं, और भी अन्य साधनों से भगवान की इंद्रियां जो हैं चंचल नहीं होती हैं। इस माया मलोक लव दर्शित भावहारी भ्रूमंडल प्रयत सौरत मंत्र सौंडे पत्नत षोडश सहस्त्र मनंग बाणे यस्येन्द्रियं विमति तुम कर्णेर्न शेकुः। इस तरह इन स्त्रियों ने लक्ष्मीपति को अपने पति रूप में प्राप्त किया। यद्यपि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता भी उन तक पहुंचने की विधि नहीं जानते। सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। कितना सौभाग्य, ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता उनसे बात करने की भी नहीं हिम्मत करते हैं। जिन भगवान से बात करने की भी हिम्मत नहीं करते हैं, उनके साथ भगवान जो है बात करते हैं, हंसते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, स्नान करते हैं। कितना सौभाग्य है इन स्त्रियों का। इस तरह इन स्त्रियों ने लक्ष्मीपति को अपने पति रूप में प्राप्त किया। यद्यपि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता भी उन तक पहुंचने की विधि नहीं जानते। प्रेम में निरंतर वृद्धि के साथ वे उनके प्रति अनुराग का अनुभव करती, उनसे हास्य युक्त चितवनों का आदान प्रदान करती, नित नवीन घनिष्ठता के साथ उनसे समागम की लालसा करती हुई अन्यान्य अनेक विधियों से रमण करती। इत्थं रमा पतिमवाप्य पतिं स्त्रियस्तां ब्रह्मादयोऽपि न विदो पदवीं यदीयां भेजुर्मुदा विरत मेदितयानुराग हासावलोक नवसंगम लालसाद्यम्। तात्पर्य में लिखा है, इस श्लोक में रानियों द्वारा अनुभूत भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग का वर्णन है। यद्यपि भगवान की रानियों में से हर एक के पास सैकड़ों दासियां थीं, फिर भी वे विनय पूर्वक उनके पास जाकर वे स्वयं जो है ना भगवान की सेवा करती हैं, उन्हें आसन देती हैं, भगवान को आसन देती हैं। स्वयं सैकड़ों दासियां हैं घर में, तो भी उत्तम सामग्री से उनकी पूजा करती हैं, उनके चरणों को धोती हैं, चरणों को दबाती हैं, खाने के लिए पान देती हैं, पंखा झलती हैं, सुगंधित चंदन का लेप करती हैं, फूल की मालाओं से सजाती हैं, उनके केश संवारती हैं, उनका बिस्तर ठीक करती हैं, उनको नहलाती हैं और नाना प्रकार की भेंटें देकर स्वयं उनकी सेवा करती हैं।
हाँ,
तो कितना सौभाग्य है कि अपने हाथों से साक्षात भगवान को खिलाती हैं, नहलाती हैं, बिस्तर ठीक करती हैं, चरणों को धोती हैं, चरण दबाती हैं, कितना सौभाग्य है। प्रत्युंगम आसन वरारहण पाद शौच तांबूल विश्रमण बीजन गंध माल्य केश प्रसार शयन वनोपहार्य दासी शता अपि विभोर विदधुस्म दास्यम। तात्पर्य लिखा है श्रील श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण तथा उनकी रानियों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने इन श्लोकों की पुनरावृत्ति कर दी। देखिए सुखदेव गोस्वामी दोबारा दोहरा रहे हैं। क्या उदाहरण के लिए इस अध्याय का श्लोक संख्या 5 इसी स्कंद के 59 अध्याय की श्लोक संख्या 44 के ही समान है। हाँ, ये जो 5वां श्लोक है ये सेन्द्रिय विमतुम करण न सेको, तो ये सब जो ना बहुत से उस श्लोक से मिलते जुलते हैं। और श्लोक 6 उसी अध्याय के श्लोक संख्या 45 के समान है। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि वरारहण शब्द सूचित करता है कि रानियों ने भगवान को अंजलि भर फूल यानी पुष्पांजलि तथा अंजलि भर रत्न रत्नांजलि भेंट किए। भगवान कृष्ण की पत्नियों में से हर एक के 10-10 पुत्र थे। उन पत्नियों में से 8 पटरानियां थीं, इसका उल्लेख है मैं पहले कर चुका हूं। अब मैं तुम्हें उन 8 रानियों के पुत्रों के नाम कहूंगा जिनमें प्रद्युम्न प्रमुख हैं। तासाम्याम 10 पुत्राणाम कृष्णस्त्रीणाम पुरोदिताम अष्टो महेश्यस्तत् पुत्रां प्रद्युम्नादीन गृणामी ते। 8 पत्नियों के नाम सुखदेव गोस्वामी पहले बता चुके हैं। अब उनके 10-10 पुत्रों के नाम बताएंगे, है ना? तो ऐसा तो संभव नहीं है कि कृष्ण के सभी पुत्रों के नाम बताए जाएं, हैं? अगर कृष्ण के सभी पुत्रों के नाम बताए जाएं, मतलब कितने नाम हो गए? 161,080 नाम हो गए, है ना? तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना? कई साल लग जाएंगे बताने में, है कि नहीं? जिसलिए 80 नाम बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 80 नाम से आप संतुष्ट हो जाओ। 8 रानियों के 10-10 पुत्र, तो ये सब जो है कार्ष्णी कहलाते हैं। कार्ष्णी का मतलब कृष्ण के पुत्र हैं, कार्ष्णी हैं। और सबसे बड़े सबसे पहले प्रद्युम्न है, प्रद्युम्नादीन, प्रद्युम्न से प्रारंभ होकर के 80 नाम सुनने के लिए आप तैयार होइए। तो सबसे पहले रुक्मिणी, रुक्मिणी के 10 पुत्रों के नाम सुनिए। महारानी रुक्मिणी के प्रथम पुत्र हैं कौन? प्रद्युम्न। फिर उनके बाद चारुदिष्ण, उनके बाद चारुदेह है। फिर तीसरे सुचारु, चौथे सुचारु। हाँ ठीक है, पहले प्रद्युम्न, दूसरे चारुदिष्ण और तीसरे सुदिष्ण, चौथे चारुदेह है और पांचवें सुचारु और छठवें चारुगुप्त और सातवें भद्रचारु। कितने हो गए? 7। 8वें चारुचंद्र और 9वें विचारु और 10वें चारु। सब चारु हैं। भगवान हरि के इन पुत्रों में से कोई भी अपने पिता से कम नहीं था। चारुदेशना सुदेशनश्चा चारुदेहश्च वीर्यवान सुचारुश्चारुगुप्तश्चा भद्रचारुस्तथा परहं चारुचंद्रो विचारुश्चा चारुश्चा दशमो हरे प्रद्युम्न प्रमुखा जाता रुक्मिण्याम नावमा पितु। ये 10 पुत्र हैं, हैं? अपने पिता से 9 नहीं है, हुँ? ये सुखदेव गोस्वामी बताते हैं ये 10 के 10 जो है ना अपने पिता से 9 नहीं है। मतलब होता है ना कि भाई अगर आप 10 हो तो हम 9 हैं, तो ऐसा नहीं है। अपने पिता से 9 नहीं है, पिता के बराबर है। अच्छा, अब दूसरा विवाह हुआ भगवान का किससे? सत्यभामा से। ठीक है, जैसे जामवती के बाद सत्यभामा का नाम आता है विवाह के क्रम में, इन यहाँ पर सत्यभामा को जो है दूसरा स्थान दिया जा रहा है। सत्यभामा के 10 पुत्र हैं, अब आप गिनिए। पहला है भानु, दूसरा सुभानु, और तीसरे स्वरभानु, और चौथे प्रभानु, और पांचवें भानुमान, छठवें चंद्रभानु, और सातवें बृहद भानु, और आठवें अति भानु, और नवें श्रीभानु, और दसवें प्रति भानु। ठीक है, फिर जामवती के 10 पुत्र। सबसे पहले सांब, सांब का नाम तो बहुत प्रसिद्ध है। दूसरे हैं सुमित्र, तीसरे पुरुजित, कितने हो गए? 3। चौथे सतजित, पांचवें सहस्रजित, और छठवें विजय, सातवें चित्रकेतु, आठवें वसुमान, नवें द्रविड़, और दसवें क्रतु। सांब आदि 10 अपने पिता के बहुत लाडले थे। भानु सुभानु स्वरभानु प्रभानुर भानुमान तथा चंद्रभानुर बृहन भानुर अति भानु तथास्तमः श्रीभानु प्रतिभानुश्च सत्यभामात्मजा 10 सांभा सुमित्रा पुरुजित छतजिच्चा सहस्रजित विजय चित्रकेतुश्च वसुमान द्रविणा क्रतु जामवत्या सुता हेते सांबाद्या पित्री सम्मता। तात्पर्य लिखा है श्रीजीव गोस्वामी ने इस श्लोक में आए पितृ सम्मता का अनुवाद किया है, अपने पिता द्वारा अत्यधिक सम्मानित। ये शब्द ये भी बतलाता है कि ये पुत्र पूर्वोक्त पुत्रों की तरह अपने पिता यशस्वी कृष्ण के समान माने जाते थे। अच्छा, अब नाग ने जीती चौथी नाग ने जीती या सत्या राजा नग्नजित की पुत्री, जिसके महल में 7 बैलों को भगवान ने नाथा था, है ना। नाग ने जीती के 10 पुत्र हैं। पहले वीर, दूसरे चंद्र, तीसरे अश्वसेन, चौथे चित्रगु, पांचवें वेगवान, छठवें वृष, सातवें आम, आठवें शंकु, नवें वसु, और दसवें कुंती। वीरश्चंद्रो स्वसेनश्च चित्रगुर्वेगवान् वृषः आमः शंकुर्वसुः श्रीमान् कुन्तिर्नाग्नेयजिते सुतान्। अब कालिंदी जो सूर्य की पुत्री है, कालिंदी, उनके 10 पुत्र हुए। सबसे पहले श्रुत, दूसरे कवि, तीसरे वृष, चौथे वीर, पांचवें सुबाहु, छठवें भद्र, सातवें शांति, और आठवें दर्श, और नवें पूर्णमास, और दसवें सोमक। श्रुतः कविर वृषो वीरहम सुबाहुर भद्र एकलह शांतिर्दर्शः पूर्णमासः कालिंद्या सोमको वरः। अब कौन है? अब कितनी हो गई? 4 हो गई, 5 हो गई। छठवीं है लक्ष्मणा, है ना, मध्य देश की राजा की कन्या जिसका स्वयंवर हुआ था, विशेष स्वयंवर में भगवान ने उसको जीता था लक्ष्मणा, तो उसका नाम माद्रा भी है। सबसे पहला पुत्र है प्रघोष और दूसरे गात्रवान, तीसरे सिंह, चौथे बल, पांचवें प्रबल, छठवें ऊर्धग, सातवें महाशक्ति और आठवें सह, नवा ओज और दसवें अपराजित। प्रघोषो गात्रवान सिंहो बलहा प्रबल ऊर्धग माद्र्या पुत्र महाशक्ति सह ओजो पराजिता। हाँ, तो अभी तक छह हो गई, अब सातवीं है मित्रविंदा। मित्रविंदा के दस पुत्र पहले हैं ब्रिक, दूसरे हर्ष और तीसरे अनिल और चौथे गृध्र, पांचवें वर्धन, छठवें उन्नाद, सातवें महांत, आठवें पावन, नवे वहनी और दसवें क्षुधी। ब्रिको हर्षो निलो गृध्रो वर्धनो नादे एवच महांतः पावनो वहिनीर मित्रविंदात्मजा क्षुधी। अब आठ, आठवीं ना, आठवीं पत्नी है भद्रा। तो उनका सबसे पहले पुत्र हुए संग्रामजित, दूसरे बृहत्सेन, तीसरे शूर, चौथे प्रहरण, पांचवें अरिजित, छठवें सुजय, सातवें सुभद्र, आठवें वाम, नवे आयुर और दसवें सत्यक। तो ये दस पुत्र कृष्ण के भद्रा नाम की पत्नी से उत्पन्न हुए, जिसका दूसरा नाम सैव्य भी था, जो कृष्ण की श्रुत कीर्ति नामक बुआ की पुत्री थी। संग्राम जिन बृहत्सेन शूरा प्रहरणो रिजेन जया सुभद्रो भद्राया वाम आयुश्च सत्य कहा। तो अभी तक 80 पुत्रों के नाम गिनाए सुखदेव गोस्वामी ने। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि रोहिणी आदि 16,100 और रानियां हैं जो नरकासुर को मार करके भगवान लाए हैं, तो उनके पुत्र कितने हैं, 1,60,000, 1,61,000 है ना। तो दीप्तिमान, ताम्रतप्त इत्यादि दो नाम बता दिए, 1,61,000 में से दो नाम बता दिए, दीप्तिमान और ताम्रतप्त इत्यादि भगवान कृष्ण द्वारा रोहिणी से उत्पन्न किए गए पुत्र थे, रोहिणी आदि। हाँ, 16,100 में से एक पत्नी का नाम बताया भगवान ने रोहिणी। ये रोहिणी वो नहीं है, बलराम की माता। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने रुक्मी की पुत्री रुक्मवती के गर्भ से शक्तिशाली अनिरुद्ध को जन्म दिया। हे राजन, ये सब तब हुआ जब वे भोजकट नगर में रह रहे थे। दीप्तिमान ताम्र तप्ताद्याम रोहिण्या स्तनया हरे प्रद्युम्नाचा निरुद्धो अभूं रुक्मवत्याम महाबलं पुत्र्याम तु रुक्मिणो राजन् नामना भोज कटे पुरे। हाँ, तो रुक्मी की पुत्री रुक्मवती है और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न। रुक्मी रुक्मिणी का भाई है ना। तो विवाह हुआ कहां पर, भोजकट नगर में, क्योंकि रुक्मी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक कृष्ण को मार करके और रुक्मिणी को वापस वो नहीं लाएगा तब तक कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करेगा। तो फिर कुंडिनपुर गया ही नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण के द्वारा पराजित हुआ, अपमानित हुआ, तो भोजकट नगर बनाया था। तो कृष्ण से तो उसकी ईर्ष्या फिर भी थी, लेकिन अपनी बहन से प्रेम होने के कारण अपनी बहन के पुत्र को अपनी कन्या से विवाह उसने किया। तो तात्पर्य में लिखा है भगवान कृष्ण की आठ पटरानियां हैं रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, नागनजिती, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रविंदा तथा भद्रा, इन आठों के पुत्रों का वर्णन कर चुकने के बाद अब सुखदेव गोस्वामी अन्य 16,100 रानियों के पुत्रों का संदर्भ देते हुए रोहिणी नामक प्रधान रानी के दो प्रमुख पुत्रों का उल्लेख करते हैं। हे राजन, कृष्ण के पुत्रों के पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या करोड़ों में थी। 16,000 माताओं ने इस वंश को जन्म दिया। एतेषां पुत्र पौत्राश्चां बभूवो कोटिशो नृप मातरः कृष्ण जातीनां सहस्राणी च षोडश। इससे क्या शिक्षा मिलती है? ये जो आजकल फैमिली प्लानिंग जो चल रही है, परिवार नियोजन है ना, ये गलत सिद्धांत है। ये गलत सिद्धांत है क्योंकि पूरी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान है, है ना। भगवान कहते हैं पिता हमस्त जगतो माता धाता पितामह, है ना। तो जब भगवान जन्म दे रहे हैं है? तो भगवान पालन करने वाले हैं, है कि नहीं। तो ये कोई सिद्धांत सही नहीं है कि ज्यादा जनसंख्या के कारण भोजन की कमी हो रही है, है ना। ये सिद्धांत सही नहीं है, है? भोजन की कमी हो रही है उसका कोई दूसरा कारण है। क्या कारण है? भगवान के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं लोग, इस कारण से, है ना। और इस प्रकार से तो और ज्यादा कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। ये जो जो जन्म पर नियंत्रण कर रहे हैं गलत तरीके से, गर्भपात कर रहे हैं, गर्भ हत्या कर रहे हैं, है ना, तो ये सब जो ना गलत तरीके हैं। बच्चे का जन्म ही ना हो तो वो गलत तरीके से जो है ना जो करते हैं, संभोग करते हैं ना, उससे भी समस्याएं पैदा हो रही हैं। और फिर गर्भ के अंदर एक बच्चा आता है तो उसको जो ना खत्म करते हैं, मारते हैं। तो ये सब जो ना भगवान के नियमों के विरुद्ध आचरण और ज्यादा समस्याओं को जन्म दे रहा है ना? तो इस बात को लोग समझ नहीं रहे हैं। श्रीमद् भागवत से क्या पता चलता है कि भगवान कृष्ण से जो ना कितने लाखों लाखों जो ना संतान हुए, और भगवान से कम नहीं है शक्ति में, कि जितनी जनसंख्या है उससे 100 गुना भी ज्यादा जनसंख्या हो जाए तो भी पृथ्वी में अन्न की कमी नहीं है, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है विदेशों में जाकर के भी चुनौती दी है और घोषणा की है, पूरी दुनिया को हम खिलाने के लिए तैयार हैं, नियमों का पालन करो। प्रभुपाद जी ने ऐसा घर बनाया जिसमें पूरी दुनिया रह सकती है। जब विवेकानंद से प्रश्न पूछा गया कि आपके पास क्या हल है, ये आपका जो वेदांत है वो कौन सुनेगा, जब आदमी का पेट नहीं भरा है, आदमी भूखा है तो आपका वेदांत कौन सुनेगा। तो विवेकानंद रोने लगे। विवेकानंद के पास कोई उत्तर नहीं था, बोले इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, रोने लगे विवेकानंद, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, हम खिलाएंगे, नियमों का पालन करो हम खिलाएंगे, है ना। तो प्रभुपाद जी ने जैसा निर्भीक उत्तर दिया किसी ने उत्तर नहीं दिया। आजकल के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, कोई उत्तर नहीं है, ये तो बड़ी समस्या है, कैसे भोजन आएगा, कैसे भोजन मिलेगा। एकमात्र प्रभुपाद के अलावा इतिहास, विश्व के इतिहास में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने निर्भीकता से कहा हो कि नहीं भोजन की कमी नहीं है। जो हरे कृष्ण का कीर्तन करो और भोजन खूब भोजन करो, है ना। तो एक प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने उत्तर दिया कि कोई कमी नहीं है, भोजन की कमी नहीं है, है ना। और ये गलत तरीके हैं जो जनसंख्या को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत गलत तरीका है, है ना। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी भगवान के पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं। आगे राजा परीक्षित ने कहा, रुक्मी ने कैसे अपने शत्रु के पुत्र को अपनी पुत्री प्रदान की। हाँ, रुक्मी के शत्रु भगवान कृष्ण है। रुक्मी तो युद्ध में भगवान कृष्ण द्वारा पराजित किया गया था और उन्हें मार डालने की ताक में था। हे विद्वान, कृपा करके मुझे बताइए कि ये दोनों शत्रु पक्ष किस तरह विवाह के माध्यम से जुड़ सके। कथम रुक्मरी पुत्राय प्रादातुहितरम युधि कृष्णेन परिभूतस्तम हन्तुम रंध्रम प्रतीक्षते एतदाख्याये मे विद्वन् दिशोर्वैवाहिकम् मिथः। हाँ, परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि कुछ और कोई घटना घटी होगी जो कि इतने जानी दुश्मन एक दूसरे के जान के दुश्मन है, विवाह से कैसे बन गए एक दूसरे से। हाँ, जो कि तो जानी दुश्मन था भगवान का। खैर, भगवान तो सबका पालन करने वाले हैं, भगवान किसी के दुश्मन नहीं है, लेकिन वो भगवान को अपना दुश्मन मानता था। तो परीक्षित महाराज को बड़ी जिज्ञासा होती है कि कुछ इसमें और भी रहस्य भरा होगा कि कैसे विवाह हुआ, कृष्ण और जो है ना रुक्मी के बीच में ये संबंध कैसे बने। और परीक्षित महाराज कहते हैं कि इसमें अगर कुछ रहस्य है तो आप बड़े योगी हैं, आप जान सकते हैं इस रहस्य को। जो घटित नहीं हुआ या जो भूतकाल या वर्तमान की बातें इंद्रियों से परे हैं या बहुत दूर की हैं, उन्हें योगी लोग भली भांति देख सकते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। अनागतम मतीतम चा वर्तमानम मतीन्द्रियम विप्रकृष्टम व्यवहितम सम्यक पश्यन्ति योगिनः। तात्पर्य में लिखा है, यहाँ पर राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को ये बतलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि रुक्मी ने अपनी पुत्री भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को क्यों दी। परीक्षित बल देकर कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जैसे महान योगी हर बात को जानते हैं, अतः वे इसे भी जानते होंगे, अवश्य जानते होंगे, और उत्सुक राजा से इसे बतलाना चाहिए। राजा की बहुत उत्सुकता है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने स्वयंवर उत्सव में रुक्मावती ने स्वयं ही प्रद्युम्न को चुना जो कि साक्षात कामदेव थे। तब एक ही रथ पर अकेले लड़ते हुए प्रद्युम्न ने एकत्र राजाओं को युद्ध में पराजित किया और वे उसे हर ले गए। वृता स्वयं मरे साक्षात अनंगोंग युतस्तयाम राज्ञा समेतान निर्जित्य जहारे के रथो युधि। तो सुखदेव को सामने बड़ा सरल उत्तर दिया। परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि कुछ जटिलता होगी कि कैसे मतलब ये विवाह हुआ, लेकिन सुखदेव को सामने बहुत सरलता से बताया कि हुआ क्या था। रुक्मी ने अपनी पुत्री का स्वयंवर किया था, तो स्वयंवर में जितने भी राजकुमार थे वो सब एकत्र थे और रुक्मवती ने प्रद्युम्न को चुन लिया। क्यों? क्योंकि कन्या तो देखती है क्या, पुरुष के रूप रंग शरीर को देखती है, और प्रद्युम्न जानते कौन है, कामदेव हैं, तो उनके समान तो कोई हो ही नहीं सकता है सुंदर, है ना। तो रुक्मवती ने थोड़ी सोचा कि ये हमारे पिता के शत्रु का पुत्र है ये, है ना। कन्या को जो है ना अगर चुनाव दिया जाता है तो वो तो उस प्रकार से देखती है, तो आकर्षित थी, तो प्रद्युम्न को जो है उसने वरण कर लिया। और फिर जब वरण किया तो स्वाभाविक है कि जितने राजकुमार हैं वो लड़ाई करेंगे, है ना, तो अपना शुल्क देना पड़ता है, पराक्रम का शुल्क देना पड़ता है। तो प्रद्युम्न जी ने अकेले जितने राजकुमार हैं उन सबको हराया। इसको कहते हैं वीर शुल्क, पराक्रम का शुल्क दिया। तो फिर क्या हुआ, जब अब उसकी कन्या ने, रुक्मी की कन्या ने प्रद्युम्न को चुन लिया, तो रुक्मी ने फिर जो है स्वीकृति प्रदान कर दी। क्यों? अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए। चलो, लड़की भी प्रसन्न है और बहन भी प्रसन्न होगी, है ना, इसलिए। हालांकि कुछ बातें ऐसी भी थी जो कि उसको प्रसन्नता नहीं हो, उसको प्रसन्नता नहीं थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जिनसे उसने जो है स्वीकृति दे दी। यद्यपि रुक्मी कृष्ण के प्रति अपनी शत्रुता को सदैव स्मरण करता था क्योंकि उन्होंने उसका अपमान किया था, किंतु अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने भांजे के साथ होने की स्वीकृति प्रदान कर दी। यद्यप्यनुस्मरन् वैरम् रुक्मी कृष्णावमानिता व्यदरन् भागिनेयाय सुताम् कुर्वन् ससुप्रियम्। तात्पर्य लिखा है यहाँ पर राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अंततो गत्वा अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए रुक्मिणी ने प्रद्युम्न के साथ अपनी पुत्री का विवाह किए जाने की सहमति दे दी। रुक्मिणी पहले भी जब रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ नहीं करना चाहता था तो इसलिए नहीं कि रुक्मिणी का वो दुश्मन था, जो भी हो मूर्खता के कारण है ना, बेवकूफी के कारण वो रुक्मिणी का विवाह करना चाहता था शिशुपाल से, है ना, तो रुक्मिणी के लिए बहुत ज्यादा कष्टदायक था। लेकिन अपने दिमाग से वो अपनी पुत्री अपनी बहन का प्रिय करना चाहता था, अपनी बहन का हित सोच रहा था उल्टा दिमाग, है ना, तो रुक्मिणी के प्रति तो उसका फिर भी प्रेम था ही, है ना, तो इसलिए उसने सहमति दे दी। हे राजन, कृतवर्मा के पुत्र बलि ने रुक्मिणी की विशाल नेत्रों वाली तरुण कन्या चारुमती से विवाह कर लिया। रुक्मिण्या स्तनयाम राजन कृतवर्म सुतो बलि उपये में विशालाक्षी कन्याम चारुमती। तो रुक्मिणी के बड़े पुत्र का विवाह बताया सुखदेव गोस्वामी ने, और फिर रुक्मिणी की पुत्री का विवाह बताया सुखदेव गोस्वामी ने, किसके साथ, कृतवर्मा के पुत्र बलि के साथ हुआ। तात्पर्य लिखा है श्री श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि भगवान की प्रत्येक महारानी से एक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। यहाँ चारुमती के विवाह का उल्लेख इन सारी राजकुमारियों के विवाह का अप्रत्यक्ष संदर्भ है। इस तरह से भगवान ने 16,108 कन्याओं के विवाह किए। रुक्मिणी ने अपनी पौत्री रोचना को अपनी कन्या के पुत्र अनिरुद्ध को दे दिया। रुक्मिणी ने अपनी पौत्री रोचना को अपनी कन्या के पुत्र अनिरुद्ध को दे दिया। यद्यपि भगवान हरि से उसकी निपट शत्रुता थी, इस विवाह को अधार्मिक मानते हुए भी रुक्मिणी स्नेह बंधन से बंधकर अपनी बहन को प्रसन्न करना चाहता था। हाँ, तो वहां अभी तक तो धार्मिक था लेकिन ये अधार्मिक था। दौहित्राया अनिरुद्धाय पौत्रीम रुक्मिणे ददा धरे रोचनाम बद्ध वैरोपी ससुः प्रिय चकीर्षयाम जानन्न धर्मम तन्योनम स्नेह पाशानु बंधनाम। तात्पर्य लिखा है श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि लौकिक मानदंडों के अनुसार अपनी प्रिय पौत्री अपने कट्टर शत्रु के पौत्र को नहीं देनी चाहिए। जिस तरह हमें ये आदेश प्राप्त होता है दुसंत अन्नम न भोक्तव्यम दुसंतम नैव भोजयेत, मनुष्य को चाहिए कि ना तो शत्रु का भोजन करे न शत्रु को भोजन खिलाए। इसके अतिरिक्त भी निषेध है अस्वर्गम लोके विद्युष्टम धर्मम अप्याचरे न तो, स्वर्ग की यात्रा को रोकने वाले या मानव समाज के लिए निंदनीय धार्मिक आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए। यहाँ ये संकेत कर दिया जाए कि भगवान कृष्ण वास्तव में किसी के भी शत्रु नहीं है। जैसा कि भगवद गीता 5:29 में भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम या त्वामाम शांति मृच्छति, ये समझ कर कि मैं हर जीव का शुभ चिंतक मित्र हूँ मनुष्य शांति प्राप्त करता है। यद्यपि भगवान कृष्ण हर एक के मित्र हैं किंतु रुक्मिणी इसे नहीं समझ सका और वो भगवान कृष्ण को अपना शत्रु मानता रहा। फिर भी अपनी बहन के स्नेह बस उसने अपनी पौत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया। इसके बावजूद हमें ध्यान देना होगा कि आध्यात्मिक जीवन के मूलभूत सिद्धांतों का परित्याग इसलिए नहीं करना चाहिए कि ऐसे सिद्धांत आम जनता में लोकप्रिय नहीं है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता 18:66 में कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, आध्यात्मिक कर्तव्यों में परम कर्तव्य है भगवान की शरणागति और वो कर्तव्य बाकी सभी आदेशों से ऊपर है। यही नहीं, इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने
एक ऐसी शुद्ध विधि प्रदान की है जो समस्त निष्ठावान व्यक्तियों को भगवान के शरण में जाने के लिए आकृष्ट करेगी। चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन, नृत्य, भोजन और दर्शन की विवेचना वाली आनंदपूर्ण विधि का पालन करके कोई भी व्यक्ति आनंद और ज्ञानमय जीवन बिताने के लिए सुगमता से भगवत धाम जा सकता है। तो भी कोई ये दलील पेश कर सकता है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को पश्चिमी देशों में इन उत्सवों और कार्यकलापों का अभ्यास नहीं करना चाहिए जो आम जनता को अप्रसन्न करते हों। इस पर हमारा उत्तर ये है, यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यकलापों को पश्चिमी देशों के लोगों के समक्ष ठीक से रखा जाए तो वे इस महान आध्यात्मिक आंदोलन की प्रशंसा करेंगे। जो लोग ईश्वर से विशेष रूप से द्वेष रखते हैं उन्हें किसी भी तरह का धार्मिक आंदोलन नहीं भाएगा, क्योंकि ऐसे लोग क्षुद्र पशुओं के समान हैं, अतः वे महान कृष्ण भावनामृत आंदोलन में बाधक नहीं हो सकते, जिस तरह ईर्ष्यालु रुक्मी भगवान कृष्ण की शुद्ध लीलाओं में बाधक नहीं बन सका। रुक्मी यदि भगवान से द्वेष करता था लेकिन बाधा नहीं कर पाया है? तो बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है। इसी प्रकार से अगर ये उत्सव होंगे कृष्ण भावनामृत के, तो जो दुष्ट हैं, ईर्ष्यालु हैं, पशुओं के समान है, पशु क्या कर पाएंगे, पशु बाधा नहीं पहुंचा सकते। हे राजन, उस विवाह के उल्लासपूर्ण अवसर पर महारानी रुक्मिणी, बलराम, कृष्ण और कृष्ण के अनेक पुत्र जिनमें श्याम और प्रद्युम्न मुख्य थे भोजकट नगर में गए। तस्मिन् नवजोदये राजन् रुक्मिणी रामे केशवो पुरम भोजे कटम जगमो सांब प्रद्युम्न कादयः। अब विवाह हो चुका, उसके बाद क्या हुआ? कुछ घमंडी राजा थे, कलिंगराज आदि, उन्होंने रुक्मी से कहा। क्या कहा? मतलब बलराम जी के साथ दुश्मनी का व्यवहार करने के लिए रुक्मी को उकसाया, और क्या कहा कि बलराम जी को चौसर में हराओ, मतलब अपमान करो, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए है? तो वे चौसर में पटु नहीं है, फिर भी उनको आदत है खेलने की, मतलब बहुत शौक है खेलने का। इस तरह सलाह दीने पर रुक्मी ने बलराम जी को आमंत्रित किया चौसर खेलने के लिए। तस्मिन् निवृत्त उद्वाहे कालिंग प्रमुखा नृपान् तृप्तास्ते रुक्मिणम् प्रोचुन् बलम् अक्षैर् विनिर्जयम् अनक्षज्ञो हेयम् राजन् अपीतम् व्यसनम् महात् इत्युक्तो बलमाहूय तेनाक्षैर् रुक्मे दीव्यते। तो कोई भी कार्य जो है अच्छा बुरा कैसे होता है? जब जिसमें अच्छा या बुरा इरादा होता है ना? तो राजा लोग चौसर खेलते हैं, अच्छे इरादे से भी खेलते हैं, मित्रता बढ़ाने के लिए भी खेलते हैं और दुश्मनी बढ़ाने के लिए भी। तो रुक्मी जो खेल रहा था तो मित्रता के नाम पर खेल रहा था, लेकिन दुश्मनी बढ़ाने के लिए ना, उनका अपमान करने के लिए, बलराम जी को हरा करके उनका अपमान करने के लिए वो खेलना चाहता, इसलिए वो बहुत बड़ा अपराध हुआ उसका, क्योंकि अपमान करने के इरादे से कर रहा था वो। उसी प्रकार से जैसे दुर्योधन ने जुआ खेला उनके साथ में, पांडवों के साथ में, किस लिए? उनका अपमान करने के लिए, उनकी धन संपत्ति छीनने के लिए, है ना? तो वो इस प्रकार से बहुत गलत काम होता है, नहीं तो क्षत्रियों में तो ये कोई गलत काम नहीं है, कोई पाप कर्म नहीं है जुआ खेलना। उस खेल में सर्वप्रथम बलराम जी ने 100 मुद्राओं की बाजी लगाई, स्वर्ण मुद्रा, फिर 1000 की बाजी लगाई, फिर 10,000 स्वर्ण मुद्रा, और रुक्मी ने जीत लिया, रुक्मी जीता गया। तो कलिंगराज अपने दांत निपोर रहा था, बलराम जी पर ठहाका मार करके हंस रहा था, है ना? बलराम जी इसे सहन नहीं कर पाए, बलराम जी को बहुत गुस्सा आया, क्यों? क्षत्रिय है, क्षत्रिय सहन करता है कोई अगर अपमान करे उसका। शतम सहस्त्रम मयुतम राम सत्रादेपणम तम तो रुक्मे जयत तत्र
कालिंग प्रासन बलम दंतान संदर्शयन्नुच्चैर नामृश्यन्तं हलायुधः।
तात्पर्य लिखा है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि सोने के सिक्कों की बाजी थी। जब बलराम जी ने कलिंग राज के निपट अपराध को देखा तो भीतर से भी बहुत क्रुद्ध हो गए, बहुत गुस्सा आया। अब ये जो है ना, ये मन का अपराध है। ये मुंह वाणी से कुछ नहीं बोल रहा है, ये हंस रहा है ना, तो ये मन से जो है ना वो अपराध कर रहा है बलराम जी का। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की बाजी लगाई जिसे बलराम जी ने जीत लिया। किंतु रुक्मी घोषित करते हुए धोखा देता है कि मैं भी जीता हूं, मैं जीता हूं। ततो लक्षम रुक्मी गृहणात् ग्लहम तत्रा जयन बलाम जितवान अहम इत्याह रुक्मी के तपमाश्रितहां। अब बलराम जी 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा जीत गए तो पहले की जितनी हार थी वो सब इधर आ गई कि नहीं, क्योंकि 100 और फिर 1,000 फिर 10,000 कितना हुआ, 11,100 तो हारे और 1,00,000 जीत गए, है ना। तो बलराम जी को तो बहुत लाभ हुआ, लेकिन अब वो धोखा दे रहा है सामने, मतलब बिल्कुल झूठ बोल रहा है कि मैं जीता हूँ। बलराम जी बहुत सुंदर थे और गुस्से में और सुंदर लगने लगे, उनके क्रोध से लाल नेत्र हो गए, तो पहले से लाल थे और ज्यादा लाल हो गए। पूर्णिमासी के दिन वो फंदे समुद्र की भांति क्रुद्ध होकर 10,00,000,000 स्वर्ण मुद्राओं की बाजी लगाई। 10,00,000,000 लो, 10,00,000,000 1,00,000 से 10,00,000,000 में आ गए, एकदम गुस्से में आ गए। मन्युना छुपिता श्रीमान समुद्र एवं परमणि जात्यारुणाक्षोतिरुषा नर्बदम ग्लहमा दे। ये उचित है, गुस्सा करना उचित है, क्योंकि झूठ बोल रहा है कोई व्यक्ति, है ना। इस बाजी को भी बलराम जी ने न्यायपूर्वक जीत लिया, किंतु रुक्मी ने फिर छल से घोषित किया कि मैं जीता हूँ, या उपस्थित जो गवाह हैं वो कहें जो उन्होंने देखा है। अब सब तो बदमाश हैं, बदमाशों के बीच में एक बदमाश कह रहा है कि भाई देखो मैंने जीता है, है ना। बलराम जी अकेले हैं और बलराम जी का अपमान करने के लिए उसने अलग से ही बुलाया था कि जहाँ कृष्ण नहीं होंगे, मतलब बलराम जी का पक्ष लेने वाला कोई नहीं होगा, झूठ का पक्ष लेने वाले जितने हैं सब उसने बुला लिए और सत्य का पक्ष लेने वाला कोई नहीं, है तो बलराम जी एकमत हो गए, उनका बहुमत है ना। तम चापी जितवान रामो धर्मेण चलमाश्रिता रोग में जितम मयात्रे में वदंतो प्रासनिका इति। हाँ, तो अब देखिए वो बहुमत अपना कर रहा है, लेकिन बलराम जी के जो है ना पक्ष में अब कहां से आवाज आई, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी। अब वो बहुमत से भी ज्यादा हो गया, वो तो अनंत मत हो गया, वो बहुमत कर रहा है अपना, और यहां बलराम जी का हो गया क्या आकाश मत, आकाशवाणी हुई। इस बाजी को बलराम ने न्यायपूर्वक जीता है, रुक्मी निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है, अब सब चुप, आकाशवाणी हुई। तदा प्रवीण नभो वाणी बले न जितो ग्लहां धर्म तो वचने न रुक्मी मदती वे मृषां। लेकिन दुष्ट राजा वे क्या कर रहे हैं, इस दैवी वाणी की भी उपेक्षा कर रहे हैं। अरे क्या होता है इससे, क्या होता है, नहीं नहीं बलराम जी हारे हैं, बलराम जी हारे हैं, मरना था उनको, इसलिए दुष्ट राजाओं द्वारा उभारे जाने से रुक्मी ने इस देवी वाणी की उपेक्षा कर दी। साक्षात भाग्य जो है ना रुक्मी को प्रेरित कर रहा था क्या मरने के लिए, अतः उसने बलराम जी की हंसी उड़ाई, बलराम जी का और अपमान किया उसने, मरना था उसको। तामना दृत्य वैदर्भम दुष्ट राजन ने चोदिता संकर्षणम परिहसन बभासे काले चोदिता। अब रुक्मी ने क्या कहा, तुम ग्वाले तो जंगलों में घूमते रहते हो, चौसर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, पहले से ही सीखा था उसने कि मुझे क्या बोलना है, इसलिए अपना वो टेप रिकॉर्ड जो उसने अपने चला दिया, वो पहले से दिमाग में जो सोचे थे कि मुझे ये बोलना है, अपमानित करना है। चौसर खेलना और बाण चलाना तो एकमात्र क्षत्रियों के लिए है, तुम जैसों ग्वालों के लिए नहीं होता। ये दिमाग में भरा हुआ सब वो टेप था, सो चालू कर दिया उसने। नैवाक्ष को विदायूयम गोपाला वन गोचराम अक्षर दिव्यं दिरा जानो बाणेशना भवादृशाम। इस प्रकार रुक्मी द्वारा अपमानित होने पर बलराम जी का क्रोध जागा और राजा हंसने लगे, है ना। उन्होंने शुभ विवाह सभा में ही अपनी गदा उठाई और रुक्मी को मार डाला। परिघ रुक्मिणे एवं अधिक्षिप्तो राजभिश्चोपहासिता क्रोधा परिघम उद्यम में जगने तम निम्न संसदी। जबकि बलराम जी ने रुक्मी का कितना पक्ष लिया था, जब भगवान कृष्ण अपमानित कर रहे थे रुक्मी को, तो बलराम जी ने इतना पक्ष लिया, उस पर दया दिखाई और कृष्ण को डांटा था, फिर रुक्मिणी को समझाया कितना उन्होंने इसका। और ये जो है ना दुष्ट है, ये दुष्ट लोग जो है ना कभी भी किसी के उपकार को मानते नहीं है, इनको कहते हैं कृतघ्न। कृतघ्न बहुत जो है ना पापी होता है, बहुत पापी होता है। जो व्यक्ति आपका उपकार करे, भला करे, दया करे, उसके साथ भी जो ना दुश्मनी करता है, बलराम जी के साथ दुश्मनी कर रहा है, ठीक है मान लो कृष्ण के साथ दुश्मनी कर रहा है, तो कृष्ण चलो पुराने शत्रु हैं, है ना, बलराम जी से दुश्मनी कर रहा है ना, तो मर गया। रुक्मिणे एवं मदिक्षिप्तो राजभिश्चोपहासिता क्रुद्धा परिघम उद्यम में जगने तम निम्न संसदी। अब जो हंसे थे हंसने वाले, अब वो भागे, अब भागे कहाँ जाएंगे है? कलिंग का राजा जो बलराम पर हंसा था और दांत दिखाए थे, वो उसने भागने का प्रयास किया, किंतु बलराम जी ने तेजी से उसे दसवें कदम में पकड़ लिया और सारे दांत तोड़ दिए। जो दांत दिखा रहा था, दांत तोड़ दिए उसके। उसी प्रकार से दक्ष के यज्ञ में जो है पूसा देवता जो है ना दांत दिखा रहा था, जब शंकर जी का अपमान हो रहा था, है ना, तो नंदी ने साथ दिया था कि तेरे दांत नहीं रहेंगे, तो फिर आगे चल करके जब दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ था तो उसके दांत ही तोड़े गए, तो पूसा देवता को जो है भग देवता के दांतों से खाना पड़ता है। जो भी भोजन खाता है तो भग देवता के दांतों से खाता है, वो नहीं मतलब अपने दांतों से नहीं खा पाता है। तो शंकर जी को अपमानित करने के लिए दांत दिखा रहा था, है ना, तो उसके दांत टूटे। तो सही प्रकार से कर्म का फल जो है ना मिलता है व्यक्ति को। कलिंग राजम तरसा गृहीतो दशमे पदे दंता न पातयन क्रोधो यो हसन दिव्रते रदुजय। फिर बलराम जी के गदा से चोट खाकर अन्य राजा भय के मारे भागे, उनकी बाहें टूटी, जांघें टूटी, सिर टूटे और शरीर रक्त से नहा गए। हंसने का मजा मिल गया और हंस लो। अन्य निर्भिन्न बाहुरु शिरसो रुधिरोक्षिता राजानो दुद्रुवर भीता बलेन परिघार दीता। हे राजन, जब भगवान कृष्ण का साला मार डाला गया तो उन्होंने ना तो इसे सराहा और ना ही विरोध प्रकट किया। भगवान जो है एक तरफ भाई है, दूसरी तरफ पत्नी है, है ना। बलराम जी तो मतलब पक्ष लिया, रुक्मिणी का पक्ष लिया, रुक्मिणी का पक्ष लिया, कृष्ण को डांटा, है ना, बड़े हैं ये। भगवान तो इधर से भी दबे, उधर से भी दबे हैं। इधर बड़े भाई हैं, उनसे भी दबना है, है? और इधर पत्नी है, उसे भी दबना है। इसलिए भगवान जो है ना तो सराहना करते ना विरोध प्रकट करते हैं, दोनों तरफ से दबे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भय था कि रुक्मिणी के साथ स्नेह कहीं खराब ना हो जाए, स्नेह बंधन, और बलराम जी के साथ भी स्नेह बंधन खराब ना हो जाए, है? तो दोनों तरफ से भगवान दब रहे हैं। चुप रहना सुकृति प्रदान करना है और सुकृति प्रदान नहीं करना है, दोनों भी है। चुप रहने में दोनों में बातें होती हैं। जब आप चुप रहते हैं तो सुकृति नहीं मिली ये भी उसका मतलब होता है, स्वीकृति मिल गई ये भी होता है, और स्वीकृति नहीं मिली ये भी होता है, दोनों मतलब होते हैं। निहत रुक्मिणी श्याले नाम रवीन साधो साधु माम रुक्मिणी बलियो राजन स्नेह भंग भया धरी। तब बलराम इत्यादि यादवों ने अनिरुद्ध और उनकी पत्नी को एक सुंदर रथ में बैठा लिया और भोज कक्ष से द्वारका के लिए रवाना हो गए। भगवान मधुसूदन की शरण ग्रहण करने से उनके सारे कार्य पूर्ण हो गए। तो अनिरुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? रोचना। उसी से ही फिर वो हुए हैं कौन? बजनाम है ना। तो रुक्मिणी के ही वंश से जो है ना मतलब कृष्ण का वंश आगे बढ़ा है ना। बाकी तो पूरा यदुवंश का संहार हो गया, लौकिक दृष्टि से पूरे यदुवंश का संहार हो गया, लेकिन अगर देखा जाए तो वो रुक्मिणी के ही वंश से फिर जो है आगे मतलब भगवान का वंश चला है। ततो निरुद्धम सह सूर्यावरम रथम समारोह्य कुश स्थले रामादयो भोज कटा दशारहा सिद्धा खिलार्था मधुसूदनाश्रया। तात्पर्य लिखा है यद्यपि रुक्मिणी समस्त यादवों को अत्यंत प्रिय थी, किंतु उनका भाई रुक्मी रुक्मिणी के विवाह के समय से ही कृष्ण का निरंतर विरोध और अपमान करता रहता था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं किसी कारण से कृष्ण के संगियों को रुक्मी की आकस्मिक मृत्यु से कोई संताप नहीं हुआ। अच्छा हुआ सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंतर्गत बलराम द्वारा रुक्मिणी का वध शीर्षक 61वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो इसमें 40 श्लोक थे जो मैंने पढ़ के सुनाए हैं। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि अगर कोई प्रश्न करे कि हम चार नियमों का पालन करते हैं और भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं है ना, तो भगवान जो है ना मानव जाति के शिक्षक हैं, तो फिर ये जो जुआ खेला गया तो इस पर हम कहाँ तक मतलब इसको समझें कि उचित है ये है ना? नहीं, ये जो चार नियम जिनका हम पालन कर रहे हैं ये कलयुग के लिए हैं, वो द्वापर युग था है? कलयुग में परिचय महाराज ने कलयुग को जो है चार स्थान दिए है, तो इन स्थानों से बचने के लिए प्रभुपाद ने भी अपने तात्पर्य में वहां लिखा है जहाँ कलयुग को चार स्थान दिए परिचय महाराज ने कि अब हमें अगर कलयुग से बचना है तो चार नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए, इन चार स्थानों से दूर रहना चाहिए है ना। लेकिन ये चारों के चारों जो है नियम है इन ये राजा लोग जो क्षत्रिय लोग हैं वो तोड़ते थे, उनके लिए ये नियम नहीं थे है? जैसे कि व्यभिचार है तो कुछ सीमा तक जो क्षत्रिय लोग थे वो व्यभिचार मतलब एक से ज्यादा पत्नियों से विवाह करते थे है? मांसाहार तो वो भी उनके लिए अनुमति थी क्षत्रियों के लिए है? जुआ भी और नशा भी तो क्षत्रियों के लिए जो है स्वीकृति थी कुछ अवसरों में और कुछ सीमा तक है ना। लेकिन जब परीक्षित महाराज ने चार स्थान दिए कलियों को तो फिर बड़ी कठोरता से हमें नियमों का पालन करना चाहिए। और परीक्षित महाराज की ये बहुत बड़ी दया है कि उन्होंने कलियों को सीमित कर दिया इस तरह से है? और कलियुग जो है अब इस तरह से फैल नहीं सकता, जिस तरह से कलयुग फैल रहा था उस तरह से वो कलयुग फैल नहीं पाया। परीक्षित महाराज चले गए लेकिन उनकी जो है ना जो सीमा है उसमें कलयुग अभी भी बंधा हुआ है और इसका लाभ हम उठा सकते हैं। तो इनका प्रश्न है कि अगर रुक्मिणी की शत्रुता थी कृष्ण से तो कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न स्वयंवर में कैसे आ गए? क्या रुक्मिणी की इच्छा से आ गए? हाँ, ये समझना चाहिए कि जब प्रद्युम्न स्वयंवर में आ गए तो रुक्मी रोक नहीं पाया क्योंकि वो विचार कर रहा था उसकी बहन का पुत्र है तो अच्छी बात है, फिर कृष्ण का पुत्र है यानी शत्रु का पुत्र है तो ठीक नहीं है। इस प्रकार मन दुलायमान था, फिर उसकी पुत्री ने भी जब प्रद्युम्न का वरण कर लिया तो उसका मन प्रद्युम्न के पक्ष में आ गया, इस प्रकार उसने विवाह कर दिया। धन्यवाद। ग्रंथ राज श्रीमन भागवतम के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा के
जाए।